And dear learners, once again I welcome to second year level mathematics program. Now we shall discuss about statistics, and you know very acquainted that about the statistics, that statistics is the one of the branch of mathematics, basically deals with the data. And when talking about the statistics and mathematics, of course in a higher level both are the separate discipline, but in school levels statistics comes under, mainly we included under the mathematics. When talking about the basic difference between the mathematics and statistics, you will find mathematics always deal with the quantification, deal with the number. In the same time, statistics basically deals with the data. There is a basic difference between the data and the number. When talking about mathematics, mathematics always believe on quantification. At beginning I told you quantification, that means it always believe on the exact value. But in case of statistics, it is the, we generally told as science of the estimation, science of estimation, and based on average, it believes on average, not exact. The basic difference between the mathematics and statistics is mathematics always believes on, always to going to find out the exact value. However, the statistics always going to find out the average value. Not, it may not be exact, but average value. The basic difference between the statistics and mathematics is that is exactness, and the statistics refers to the average value. When talking about the statistics at the beginning, because that statistics in generally at a secondary level it is introduced, not at a, at earlier there you have not learned. At the beginning, of course, when talking about the beginners of the statistics, statistics basically deal with the of course the data, and mainly concerned with the collection. I am repeating the certain values which is required in order to understand the statistics. Statistics basically deals with the collection, classification, organization, analysis, and interpretation of data is called statistics. That is the exact definition. At the beginning I told you that a collection, first task of the statistics is the collection of data. Second phase is the classification, जो data मिलेगा उनको classify करेगा. Then organization means on basis of classification एक sequence follow करेगा, organize करेगा as per the requirement, and then analysis करेगा. ये हर case analysis है. In generally हमारा ये दिमाग में आता है कि statistics means only analysis करना, मतलब calculation करना, not. Statistics starts from the collection, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिस, एंड लास्टली जो पार्ट है इंटरप्रिटेशन करेगा. देन वी कैन, द टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स. व्हेन टॉकिंग अबाउट एट द बिगिनिंग दैट आई टोल्ड दैट द मैथमेटिक्स ऑलवेज कंसर्न विथ द नंबर, हाउएवर द स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विथ द डाटा. दैट इज द डाटा स्टैंड फॉर, अगर हम बात करेंगे डाटा एक प्लूरल टर्म, हम इन जनरली नहीं कि डाटा डाटास नहीं होता है. डाटा कम्स फ्रॉम द सिंगुलर टर्म इज डाटम, DATUM, बट डाटा इज द प्लूरल टर्म. डाटा मतलब है बहुत सारे इंफॉर्मेशन. इट इज द वेरी बेसिक थिंग्स. हम डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स भी अगर तो हम इन बिगनर्स है, स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द डाटा. अगर डाटा जैसे है स्टैटिस्टिक ऐसे है. अगर हम डाटा पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एक होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है. जैसे हम बात करेंगे कि आपका स्कूल पे कितने कैंडिडेट थे, 52 कैंडिडेट, और आप 52 कैंडिडेट का मार्क है 40, 40, 50, 52, दिस आर द, नो, दिस इंफॉर्मेशन आर द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. सो दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो जरूरत पड़ेगा उसी स्टैटिस्टिक्स को हम बताएंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स. एक क्वालिटेटिव होता है कि आप कितने अच्छे परफॉर्मेंस करें, हाउ यू आर गुड, हाउ यू आर ब्यूटी. दिस द एक बिहेवियर को, एक जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दूसरा तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं. है ना, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स.
ना
बेसिकली एट द बिगिनिंग एट द सेकेंडर लेवल वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव पार्ट नॉट क्वालिटेटिव पार्ट. ऑफकोर्स क्वालिटेटिव का जो वैल्यू है वो बहुत जरूर है, वो हायर स्टेज में पढ़ाई करना पड़ता है.
okay.
और एट बिगनिंग हम क्वांटिटेटिव पढ़ना बहुत जरूरी है.
okay.
क्योंकि बेसिकली हम ऑफकोर्स कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज डाटा निकालेंगे. सो दैट्स वाई एट बिगनिंग वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स. ओके. एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट बेसिकली यूज इन स्टैटिस्टिक्स का जो यूज हम बात करेंगे, ये हम हर चीज़ को पता है कि स्टैटिस्टिक्स हम डे टू डे लाइफ में हर गली पे, हर रास्ते पे, हर अपना लाइफ में बहुत जुड़ा है स्टैटिस्टिक्स के साथ. क्योंकि जितने कोई एक प्रोजेक्ट है और कोई सर्वे है, कोई प्रेडिक्शन करने है, कोई प्लानिंग है, पहले अगर हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी प्लान है, आपका घर का इनकम का जो प्लान कर रहे हैं कि सपोज मुझे एक सैलरी मिला कि 50-50,000 सैलरी मिला, हम देखते हैं कि कितने हम खर्च करेंगे, कितना हमारा एवरेज इनकम है, एवरेज एक्सपेंडिचर है, अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. कोई भी प्लानिंग फ्रॉम द होम टू गवर्नमेंट, कोई भी जगह पे स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी इन द सेंस, उसका बिना तो मान के चलिए कोई आप प्लान नहीं कर पाओगे. कोई भी जगह अगर रोड कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, एवरेज कितने आपको ब्रिक्स चाहिए, कितने एवरेज आपका जो लेबर चाहिए, ये बहुत जगह पे. तो हम अगर बात करेंगे बहुत अप्लाइड, हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो अल्टरनेटिव नेम बोलते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं. कि बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन का, बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ के साथ. बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं कि शुरू हुआ था कि सर्वे टाइम पे, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा पॉपुलेशन इंडिया पे कितना है, अगर बात करेंगे 102 करोड़ है. इट इज नॉट एग्जैक्ट 102 करोड़, इट इज नॉट एग्जैक्ट. यहाँ पे आप काम नहीं करेगा, मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको काम करेगा स्टैटिस्टिक्स काम करेगा. 102 करोड़ अगर हमारा पॉपुलेशन है इंडिया पे, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लासिफिकेशन, एक तो कलेक्शन हुआ कि घर घर के हम देखे, कैलकुलेशन किया, फैमिली वाइज सर्वे हुआ. हाउ वी फाइंड आउट 102 करोड़ है, कोई तो सर्वे हुआ. जो वो जो सर्वे है, दिस इज द कलेक्शन, सेंसस होता है. जो दो सेंसस है कि इविली हमको 102 करोड़ पे कितने मेल कैंडिडेट है, कितने फीमेल कैंडिडेट है, कितने अर्बन है, कितने रूरल है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन भी हम सेपरेट है. ये डाटा है, डाटा इन्फॉर्मेशन है. अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट प्लान करता है कि रूरल के लिए कितने हम एक्सपेंडिचर करना है. कोई भी जगह पे इंडिया का जो टोटल बजट है बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स. बजट मतलब आप इनकम तरफ से हो कि एक्सपेंडिचर हो, कि रूरल इंडिया के लिए कितने खर्च करना है, रोड कंस्ट्रक्शन के कितने खर्च करना है, ये सारे जो एक्सपेंडिचर है बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स होता है. तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स का जो जो इम्प्लीकेशन है, सर्वे से शुरू होता है और हमारा कोई भी प्रेडिक्शन है. इवनली आपको बात करते हैं कि अगर मेट्रोपॉलिटन जो होता है कि प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको आज 24 आवर्स में बारिश होगा कि नहीं होगा, ये जो एक प्रेडिक्शन है, ये सर्व करते हैं कि पहले क्या सिचुएशन है देन प्रेडिक्ट करते हैं. और हरियाणा पे, कन्नड़ स्टेट पे इस साल कितने राइस क्रॉप मिलेगा, ये जो प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स. इवनली बोलते हैं कि जो डॉक्टर जो आपका मेडिकल साइंस, पहले नहीं था, मेडिकल साइंस भी शुरू करती है कि स्टैटिस्टिक का बेस्ड में ये मेडिसिन पे इतने लोग मतलब क्योर हो रहा है, सो इट दिस मेडिसिन इज बेटर देन दिस मेडिसिन. ये जो आइडिया है, ये शुरुआत है, ये स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत है. ऑफकोर्स हम बिगनर्स है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं स्टैटिस्टिक्स बहुत आगे पढ़ा हूँ और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार है. मैथमेटिक्स कभी कभी घुस जाते हैं कि कैलकुलेशन पे, रियली जो इम्प्लीकेशन है लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है. कोई एक स्टैटिस्टिक्स हर डिसिप्लिन, आप तो अभी स्टेज सेकेंडरी लेवल पे है, जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा, मैं ऐसे सब्जेक्ट देखा नहीं जिस पे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे. आप मैथमेटिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, बायो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, बायो स्टैट बोलते हैं उनको, अकाउंटेंसी पढ़ो, कोई भी डिसिप्लिन आप लाइफ में चॉइस करना है, और बैंकिंग करो, कोई भी डिसिप्लिन आप लाइफ में चूज कर रहे, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा
साइकोलॉजी
पे स्टैटिस्टिक्स है इवनली आपका सेकेंडरी पे है। मैं तो आज ही क्वेश्चन सब एनालिसिस करके आ रहे थे, वही है हर जगह पे हर डिसिप्लिन पे आप स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि इस सब्जेक्ट को, लेकिन रियल जो शुरुआत है मैथमेटिक्स से शुरू है, मैथमेटिक्स ही की देता है कि आपको कैसे मेनली एनालिसिस कैसे करना है, मैथमेटिक्स का रोल है, बाकी बहुत जगह पे इम्प्लीकेशन है। सो बेसिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स द स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डाटा, एट बिगिनिंग आई टोल्ड डाटा डज नॉट मीन द नंबर, डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अगर क्वांटिटी टर्म पे आ रहा है, न्यूमेरिकल होता है, देन वी कैन से न्यूमेरिकल डाटा। डाटा अगर क्वालिटी टर्म पे आ रहा है, देन वी कैन से दिस इज द क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन इन जनरल आइडिया होता है डाटा मीन्स आपका 50 रुपया 60 रुपया, ये नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दिस एग्जैक्टली। देन अगर एनदर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बताएंगे, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, है ना। फर्स्ट एट स्टैटिस्टिक्स में पहले जो स्टेज है हम बात कर रहे हैं अभी, कलेक्शन ऑफ द डाटा। अगर कलेक्शन का जा रहे, कोई कलेक्शन डाटा कलेक्ट कर रहे, आपका सोर्स ऑफ डाटा दो टाइप होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो जिसको बोलते हैं आई विटनेस, फर्स्ट हैंड डाटा, प्राइमरी डाटा जिसको बोलते हैं, जिसको हम अगर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स टर्म पे बोलेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर, अगर कोई भी है, कोई पर्सन अगर खुद इन्वॉल्व है डाटा कलेक्शन पे, देन दिस डाटा इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। अगर मैं पूछा कि कोई सेकेंडरी डाटा मीन्स मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन दूसरा मीडियम से, दूसरा एजेंसी से, दूसरा पर्सन से, है ना, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट से, अगर हिस्ट्री, जो जितने हिस्ट्री है वो प्राइमरी डाटा नहीं है, दिस इज द सेकेंडरी डाटा। मैं ट्रू, मैं नॉट ट्रू, है ना, बाबर कितने ईयर पे इंडिया आए थे, जितना कोई किताब में लिखा है वही किताब को हम रेफर कर रहे, दिस इज द सेकेंडरी डाटा, दिस इज नॉट प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश इतने बड़ा है, तो इतने वर्ल्ड इतना लार्जेस्ट है, और लिमिटेशन है कि हम लैक ऑफ टाइम है और बहुत खर्च पड़ जाएगा, है ना। आप वेब पेज में डाटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। तो द पॉइंट इज व्हेन द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन्वॉल्व फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, दिस काइंड ऑफ डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी सोर्स पे अगर डाटा कलेक्शन हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा, है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सोर्स ऑफ डाटा। नाउ विल कम आफ्टर कलेक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट फेज इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा। नाउ विल कम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन करना है, पहले प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट को थोड़ा रिफाइन करेंगे तो ऑर्गेनाइज होता है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ जो डाटा होता है, एक बोलते हैं हर टाइम रॉ डाटा, रॉ डाटा मतलब प्रिलिमिनरी डाटा, वो डाटा एक साथ ले आए, आने के टाइम पे कोई सोचे नहीं हम, डाटा कलेक्शन टाइम पे कुछ जैसे मिल रहा है ऐसे ले के आए, कि जैसे सब्जी खरीद करते लिए जैसे मिला वही डाल दिया बैग में, फिर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन डाटा। अगर रॉ डाटा को हम जैसे बोले से एग्रीशिएशन कर रहे हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं कोई एक बेसिक कैरेक्टर्स, कोई एक प्रिंसिपल फॉलो करके, देन वी कॉल द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द प्रिलिमिनरी डाटा इज कॉल्ड द रॉ डाटा। वी हैव टू अरेंज द डाटा, बेसिकली डाटा का बात करेंगे कि डाटा बेसिकली प्रेजेंट होता है टू मेथड्स पे, एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। यहाँ आता है अनग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक जितने बॉयज है एक ही पे, एक झूला पे रखेंगे सपोज नंबर को, देन इट इज कॉल्ड द बॉयज डाटा, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स,
राइट।
हाँ, देन दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। ग्रुप मीन्स एक ग्रुप फॉर्म पे करना है, सपोज एक स्कूल पे 50 कैंडिडेट है, 50 स्टूडेंट को मार्क को हम 10 कैंडिडेट को पहले तो अरेंज कर लेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है स्टैटिस्टिक्स में, डाटा को अरेंज करना है आइदर एसेंडिंग पे और डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, मिक्स करके अरेंज करने से कन्फ्यूज होता है, फायदा होता है। अभी हम एक कलेक्शन के बाद, कलेक्शन करके कोई फायदा नहीं है जब सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर रहे, तो एनालिसिस कर पाएंगे अच्छे से, इजीली कर पाएंगे अगर डाटा ऑर्गेनाइज मैनर पे है। तो ये सबके साथ लिंक है, सबसे बड़ा बात है कलेक्शन जैसे इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है. सो इसलिए अगर अन ग्रुप डाटा है तो दैट्स फाइन. अन ग्रुप डाटा को आइदर एसेंडिंग ऑर्डर पे और डिसेंडिंग ऑर्डर पे रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डिसेंडिंग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, असेंडिंग, लेकिन मिक्स करके नहीं रखना है. और ग्रुप डाटा जो होता है, ग्रुप डाटा का जो होता है जैसे 10 to 20 कितने कैंडिडेट रखे, 21 से 30 कितने कैंडिडेट रखे, 31 से 40 कितने कैंडिडेट है, इस पर हमको एनालिसिस करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ग्रुप डाटा पे बहुत ह्यूज डाटा को, लाख करोड़ डाटा को हम इकट्ठी करके एनालिसिस करेंगे. इजीली एनालिसिस करने के लिए ग्रुप डाटा बहुत जरूरी होता है. सो बेसिकली डाटा जो डाटा का अगर कैरेक्टर्स टाइप कैटेगरी करेंगे, डाटा जैसे हम प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एक टाइप ऑफ कैटेगरी हो गया. ये यहाँ पे एक कैटेगरी आ गया ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा. नेक्स्ट होता है ग्रुप डाटा, एक टर्म होता है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, दो टाइप्स होता है. अगेन अनग्रुप डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अनग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप विदाउट फ्रीक्वेंसी. सपोज 5 mark 10 candidate रखे, सो 5 mark का जो फ्रीक्वेंसी आएगा 10 आएगा. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ जो अकरांस, नंबर ऑफ जो सेम नंबर को कितने कैंडिडेट रखे, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. ओके, सो जनरली ऑन ग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कभी कभी फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकता, दैट इज द बेसिक थिंग्स. एंड ऑन ग्रुप, ग्रुप डाटा अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एक इंक्लूसिव डाटा, एक्सक्लूसिव डाटा. नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्टैटिस्टिकल टर्म. बहुत मजा है टर्म, लेकिन अंदर बहुत बात है, क्योंकि उनको जितने अच्छे से हम समझ पाएंगे, इतने अच्छे से हम इंटरप्रेट कर पाएंगे
जी.
अदरवाइज ये जैसे नहीं है कि कविता नहीं है सुन लिए, वो नहीं. बहुत अच्छे से है. असेंडिंग मीन सही ढंग में छोड़ दिए, अगर एक नंबर को छोड़ दिए, डाटा आपको ठीक नहीं आएगा, एवरेज ठीक नहीं आएगा.
राइट,
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जैसे हम बात किए कि ग्रुप डाटा अगेन डिवाइडेड इनटू, बोलते हैं उनको इंक्लूसिव डाटा, एक्सक्लूसिव डाटा. आज तक भी मैं देखे कि बहुत बड़ा बड़ा लोग भी आज तक कन्फ्यूज है, ग्रुप इंक्लूसिव हुई चीज, इंक्लूसिव हुई चीज, एक्सक्लूसिव, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. यहाँ पे होता है जैसे हम जैसे 50 कैंडिडेट का एग्जाम्पल लिए थे, 50 कैंडिडेट का जो मार्क एग्जाम्पल लिए थे, 0 to 9 कितने कैंडिडेट रखे. ओके, 9 शुरू किए नहीं हम, 10 से शुरू किए, 10 to 19, 20 to 29, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डाटा. ओके, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डाटा. दिस इज द मतलब नंबर्स आर नॉट रिपीटेड. 0 to 9 10 से शुरू है, 19 से खत्म हुआ, देन 20 से शुरू है, 29 से खत्म हुआ, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव डाटा. एनादर होता है एक्सक्लूसिव डाटा. एक्सक्लूसिव डाटा क्या होता है, इस पर उसका हर डाटा का एक इंटरप्रिटेशन पे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. जैसे हम करेंगे 0 to 10 अगेन शुरू होगा, 10 to 20 अगेन शुरू होगा, 20 to 30, देन दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव डाटा. क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, हम तो अभी फिलहाल ये मौका नहीं है डिस्कशन करने का. ये बहुत बड़ा, हर डाटा का एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है. जैसे हम बात किए थे कि 10 to 19 यहाँ का लोअर लिमिट, 10 इज द लोअर लिमिट, 19 इज द अपर लिमिट. ओके, वी कैन से द सेंस इज हायर, बट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो पहला है वो लोअर है, जो हाइस्ट है वो अपर लिमिट है. देन उनका एक टर्म यूज होता है क्लास साइज, क्लास साइज, क्लास लिमिट बोलते हैं. जैसे हम बताए कि 10 to 19 और 10 to 20, ये 20 - 10 होता है, दैट इज 10, दैट मीन्स उनका गैप कितना है. वही डाटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 0 to 5 कर सकते हैं, ओके, 6 to 10 कर सकते हैं, देन क्लास साइज इज 5. ओके, डिपेंड करता है क्लास साइज क्या है. क्लास साइज मीन्स द गैप बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द क्लास साइज. अगर ये मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, अभी कभी कभी स्टैटिस्टिक पढ़ना है, 10 डाटा गैप करने ज़्यादा आसानी होगा कैलकुलेशन पे, क्योंकि 10 अगर कोई सी नंबर से डिवाइड करेंगे ये आसान हो जाता है, है ना, तो उसका भी है. लेकिन ज़्यादा करोड़ पे है तो 100 गैप करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कितने लार्जर डाटा है, लेकिन क्लास साइज आइडिया लेना पड़ेगा. आई वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टर्म हियर, हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज दिस टर्म विल हेल्प टू अंडरस्टैंड रियल स्टैटिस्टिक्स. दैट इज द बेसिक थिंग्स हियर. एक्चुअली सेकेंडरी लेवल पे हम बहुत चीज हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन आगे हायर स्टेज पे आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट है, जैसे हम बात किए थे कलेक्शन ऑफ द डाटा, देन हम प्रेजेंट किए डाटा को, प्रेजेंट किए किसी ढंग में प्रेजेंट करना है. थर्ड जो है आपको है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स से जो आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच बीच बीच पे आ जाता है कि 10 to कितने प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 50 ओवर पे, कमेंटेटर बोलते हैं कि 50 इतने रन होने वाले हैं, है ना, एक प्रेडिक्ट करते हैं. मैनट ट्रू बट एक दे रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली डाटा देते हैं. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जैसे आप देखे हैं कि क्रिकेट मैच पे एक बार ग्राफ यूज करते हैं, ग्राफ आई एम टॉकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वही सेम डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को एक पिक्चोरियल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि कैची होता है. कैची इन द सेंस आपको इजीली क्या गैप है पता चल जाएगा. जैसे हम एक पॉपुलेशन को सारे इंडिया पे जो 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट का पॉपुलेशन को लिखने जगह पे एक ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सो दैट इजीली आपको पता चलेगा यूपी पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसे है ना. बार, दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ, बराबर से लाइन ग्राफ, मतलब जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा लाइन होगा, मतलब वहाँ से जल्दी से कैच पकड़ जाएगा, है सारे चीज़ को इकट्ठी करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना. ये एक सबसे बहुत इम्प्लीकेशन, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. यदि ग्राफिकली हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वहाँ से हमको बहुत चीज़ इंटरप्रेट कर पाएंगे. जैसे है कि आपको तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो हर डाटा क्रिकेट, आजकल फुटबॉल मैच में भी आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ जो डाटा है, हम तो अब मैथमेटिक्स को डिस्कशन मोड पे कर रहे हो, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा हमारा जो किताब है SLM जो है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड है, आप वहाँ चैप्टर पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक चैप्टर, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में दो चैप्टर है, एक तो है आपको जिसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एक चैप्टर का नाम है, वही चैप्टर को आप जाएंगे तो डिटेल्स ग्राफ बारे पे है, क्योंकि ग्राफ को हम डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है बट वी कैन डिस्कस. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ. वन फर्स्ट कैटेगरी इज द बार ग्राफ. जो बार ग्राफ बनता है वो अगर डाटा अगर इंक्लूसिव है, देन इट इज कॉल्ड द बार ग्राफ, से हम इन शो कर सकते हैं. अगर डाटा एक्सक्लूसिव है, देन वी कैन से दिस इज द हिस्टोग्राम पे आप शो कर सकते हैं. अभी पता चलेगा कि किस लिए हम डाटा को कैटेगराइज कर रहे हैं. ओके, सो अगर डाटा एक्सक्लूसिव है, हम हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. और मैं फिर भी आपको दोहराना चाहता हूँ, आप SLM बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपको पूछा होगा कि आप इसी डाटा दिए, आपको उनका रिप्रेजेंटेशन कर हिस्टोग्राम से. थर्ड कैटेगरी ऑफ डाटा इज कर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम पहले बनाना है, देन एक पॉलीगन बनाना पड़ेगा ना. नेक्स्ट है पाई चार्ट. एक पाई चार्ट मतलब आपको एक जो सर्कल बना कि उनका प्रोपोर्शनेट वैल्यू को निकाल के हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पाई चार्ट. तो बेसिकली जो डाटा है, डाटा इज कभी लिखना नहीं है, डाटा आर होता है कि बिकॉज एट बिगिनिंग आई टोल्ड इट इज द प्लोरल. डाटा आर इन जनरली रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ ग्राफ. वन इज द बार ग्राफ. बार ग्राफ मीन्स आपका जो रेक्टेंगल रहेगा, जो लाइन ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं, वो सेग्रीगेट है, फर्क रहेगा. जो हिस्टोग्राम है जुड़ा होगा, एक रेक्टेंगल के साथ दूसरा जुड़ा होगा, मतलब अटैच है, वो सेपरेट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम. और जो हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ले रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे आपको कुछ चीज डिटेक्ट करना है, जैसे मीन मीडियन आगे जो पढ़ेंगे डिटेक्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द मोड और मीन और मीडियन. दैट्स वाई दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. एंड फोर्थ कैटेगरी है जैसे पाई चार्ट. पाई चार्ट में आपको प्रोपोर्शनल जो ज़्यादा एरिया लेगा एंगल से, वो उसको हम बोलेंगे कि हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है. सो देयर आर बेसिकली 4 types of representation of data: bar graph, histogram, frequency polygon, and pie chart.
All right.
And we'll continue our discussion on the next part of the statistics. Dear learners, we are discussing about the statistics. At the beginning, we have already discussed about the, you know, collection, classification, and representation of the data. Right now, we will discuss about the analysis part. Analysis of the, data, basically at the beginning, we are talking about the measures of central tendency. MCT, जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं, ये बहुत फेमस है स्टैटिस्टिक्स दुनिया में. कोई अगर पूछेगा कि मीन मेडियन मोड यही है स्टैटिस्टिक्स है. इट्स एग्जैक्टली द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड द एवरेज. अंडर द MCT बेसिकली एवरेज को एनालिसिस करने के थ्री एस्पेक्ट है, थ्री डिफरेंट मोड है. वन इज द मोड, फर्स्ट है मीन है, मेडियन है, देन मोड है. आप कोई भी एक डाटा को आप किसी तरफ से अब यूज कर सकते हैं. सेम डाटा को आप मीन निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं ना. तो फर्स्ट जो एनालिसिस का जो पहला स्टेप है, हम उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं मीन. और समटाइम्स यू आर टॉकिंग एज एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, बिकॉज हियर नंबर इज एरिथमेटिक मीन्स नंबर इज बेसिकली इन्वॉल्व. उनका एवरेज निकालना है. एवरेज अगर निकालेंगे, उनका तरीका है बेसिकली, हमको मीन निकालने का जो तरीका है, अगर बात करेंगे वेरी सिंपल है कि अगर आपका क्लास पे फोर कैंडिडेट का मार्क है सपोज 50, 60, 70, 80. हम इजीली डाटा ले कि हम फेस टू फेस कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर मीन मार्क कितना है, मीन मार्क यही होगा 50 + 60 + 70 + 80 अपॉन 4. दिस इज द मीन वैल्यू. मीन होगा, अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 60 और 50 180 180 + 80 240 अपन आपका 4, दैट इज द एवरेज इज द 60 मार्क. मतलब क्लास का जो एवरेज मार्क है 60 है. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एरिथमेटिक मीन और मीन. सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला है, वेराइट फार्मूला है. एक तो एक इजीली फार्मूला में जो बताया, लेकिन जनरलाइज जो फार्मूला है हम उनको बोलते हैं. इन जनरली अगर मीन निकाल रहे हो आप एक्स बार, उनका जो एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. अगर नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैटिस्टिकली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करें, एक्स बार इज द मीन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज द टर्मिनोलॉजी. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आप जितने ऑब्जर्वेशन लिए उनको ऐड करना है. सम मीन्स SUM, ऐड करना है बाई नंबर ऑफ, कितना ऑब्जर्वेशन था, 4 ऑब्जर्वेशन था. दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ बाई अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बात ये बनेगा जब डाटा अनग्रुप्ड है. अगर ग्रुप हो गया ये काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला. सो डिपेंड्स करता है, ये मीन का बहुत सारे फॉर्मूला है. बहुत सारे मीन्स 3-4 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है बेसिकली. फर्स्ट फार्मूला इज द एक्स बार इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 + ……xn अपन एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म. और अनदर फार्मूला जो है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी है, अनग्रुप डाटा है लेकिन फ्रीक्वेंसी है, सपोज 50 मार्क 4 कैंडिडेट रखे, ओके 70 मार्क 2 कैंडिडेट रखे, 60 मार्क कोई कैंडिडेट रखे नहीं, मतलब 0 लिख सकते हैं, है ना, 1 कैंडिडेट, 0 नहीं है, 1 कैंडिडेट रखा है. सो उनके लिए जो फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ FiXi / Fi, ये फॉर्मूला है. तो बात है हु इज द Fi, हु इज द XI, ये इजीली बात नहीं है. Fi स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी. आप तो एक्स, मतलब XI स्टैंड फॉर XI, I स्टैंड फॉर I to N, मतलब फर्स्ट X1 लेना है तो फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट कैंडिडेट. X2 लेना है सेकंड कैंडिडेट, X3 लेना है थर्ड कैंडिडेट. ऐसे होगा, फर्स्ट कैंडिडेट कितने फ्रीक्वेंसी आया, सेकंड कैंडिडेट का कितनी फ्रीक्वेंसी आया. सो थर्ड और एक कॉलम, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बनाना पड़ेगा. तो पहला टर्म जो कॉलम बनाना है XI, मीन्स कैंडिडेट है. F5 स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी में बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितने बार सेम ऑब्जर्वेशन आया, मतलब रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सपोज 50 मार्क को 5 कैंडिडेट रख सकते हैं, है ना, रखते हैं भी, तो वहाँ का फ्रीक्वेंसी होगा 50 के जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, बात इतना ही है।
राइट,
ओके। सो यह है XI था उनको जगह पे FI जो था 3 था, अगर 50 यहाँ 3 हुआ, अगर FI XI होगा 50 × 3 दैट इज 150। दिस इज द वे टू फाइंड आउट। अगर फिर हमारा एक्स बार यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ FI XI जितने 150 होगा, 180 होगा, 120 होगा, उनको ऐड कर देना है। और FI स्टैंड पर जितने फ्रीक्वेंसी है, 3 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट, लास्ट को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा सम ऑफ FI XI अपॉन XI। दैट मीन्स एक जो फॉर्मूला था X1 X2 X10 अपॉन N, ये अनग्रुप डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। अभी जो मैं फॉर्मूला बताया अनग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, अभी हम आएंगे ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है सेम है, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आएगा क्योंकि तो ग्रुप है, क्योंकि 0 to 9, 9 to 10, 10 to 20 ये सब डाटा आएगा, यहाँ का सेम फॉर्मूला रहेगा FI XI, लेकिन यहाँ का एक मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिडिल वैल्यू जैसे है FI XI को ऐड करके उनका मीन वैल्यू निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा। उनका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोलते हैं जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, एक बोलते हैं okay. उनका जो फॉर्मूला है X bar = A + FI DI/N। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इतना आसानी से बोल देता हूँ। A स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ FI DI/N। मैं यहाँ कोशिश करना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ जुड़े हैं आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको इसी जगह पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत चीज समझ नहीं पाओगे। ऐसे आप फॉर्मूला याद करके कोई वैल्यू नहीं है जब यूज नहीं करेंगे। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो किताब में 636 पेज पे ये डिटेल्स है, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। आप ये किताब में डिटेल्स बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के साथ जोड़ेंगे तो बहुत चीज़ आप समझ पाएंगे। तो मैं तो वेरी सिंपली फॉर्मूला बता देता हूँ, रियल आपको एग्जाम्पल के साथ रहने के बाद आपको डिटेल्स प्रैक्टिस करोगे फिर पता चल जाएगा, और एक अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीन, जैसे मीन वैल्यू हम निकाल रहे हो, अगर मीन वैल्यू पता है कितने कैंडिडेट का डाटा है, ये भी हम अल्टरनेटिव भी निकाल सकते हैं। दैट इज द वेरी, इससे इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी किताब में दिया है, आप उनको देख सकते हैं। सेकेंड जो वे ऑफ फाइंडिंग द MCT दैट इज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज द मेडियन। मेडियन जो है, मेडियन बेसिकली मिडिल वैल्यू बोलते हैं, मेडियन स्टैंड फॉर द मिडिल वैल्यू। अगर हम बताते हैं कि 7 इलेक्ट्रिक पोल है, 7 इलेक्ट्रिक पोल हम अगर बाहर से देख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रिक पोल है, मिडिल पे कौन है, मिडिल पे रहेगा 4 नंबर वाला, यहाँ 7 है ना, 7 है मीन्स कितने, 3 है यहाँ पे, 3 है, 4 वाला तो है मिडिल। मिडिल वैल्यू क्या है एक्चुअली, जो टर्म है मेडियन मीन्स मिडिल वैल्यू है। अगर 8 पोल है, अगर 8 पोल है कौन मिडिल है वहाँ पता करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो उनके लिए दूसरा फॉर्मूला है, मैं अभी बताना चाहता हूँ। अगर मिडिल टर्म, पहले हम कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, पहले अनग्रुप डाटा देन ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इज सम एक्सटेंट क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल इन द सेंस बिग डाटा है। तो पहले अनग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला है, मीडियन का जो फॉर्मूला है, N+1 अपॉन 2 टर्म। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वही डाटा नहीं लेना है आपको, पहले मीडियन निकालने के लिए पहले आप डाटा को अरेंज करना है, अरेंज करना है आइदर एसेंडिंग हो कि डिसेंडिंग हो। अगर 20, 20, 25, 30, 35 चार डाटा है, आप 35 पहले नहीं लिख पाओगे, पहले लिखना पड़ेगा 20 लिखना पड़ेगा, देन 30, 35, 40, देन इट इज नाउ द एसेंडिंग फॉर्म। यहाँ का जो nth टर्म, ये और ये इवन है, 4 इज द इवन टर्म, है ना। अगर ऑड टर्म है, जैसे हम बात किए 20, 25, 30, 35, 40 है, ये 5 टर्म है, यहाँ का जो मेडियन वैल्यू आएगा, मेडियन वैल्यू इज द 5 टोटल टर्म, 5 5 plus 1 that is 6, 6 upon 2 that is third term. Third term, who is the third term? Jaise hum liye the 30, 35, 40 is the median value. That is the formula. That means agar observation odd hai, unka jo median value hoga n plus 1 term. Okay, agar even hai to thoda sa humko badh jayega calculation karne mein. Agar even hai wahan ka same hai, jaise 5 tha, agar 6 term agar le liye, 50 le liye, to yahan ka jo value aayega 50, 6 term means third term plus fourth term, jo term value hai, suppose 40, 45 upon 2, that is the median value.
Okay.
That means 40 plus 45, that is 95, 95 upon 2, that is 95 upon 2 means aapko aayega 47.5, that is the exact median value. That means the very simple hai, very simple is agar odd term hai, very easy to find out, that is n plus 1 term. Agar even term hai, very simple also, n plus 1, n by 2 term plus n plus 1 by 2, whole upon 2, that is the formula, find out the median. Or jo group data hai, ye calculation bada hai, group data of median, aap unke liye higher study karna padega, matlab higher level pe hai, aap in beginning pe ye data nahi hai median ke liye. Agar mode hai, mode jo value hai, mode is the जो उनका जो फॉर्मूला है, ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एक क्लास पे 50 कैंडिडेट है, 50 कैंडिडेट है, आई एम रिपीटिंग 50 कैंडिडेट है, 50 कैंडिडेट का अलग अलग मार्क है, भी सेम मार्क हो सकता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सपोज 40 मार्क ज़्यादा कैंडिडेट रखे, दैट इज द मोड. ओके, मोड मींस जो मार्क को ज्यादा कैंडिडेट रख, मतलब सिक्योर किए, दैट विल बी द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मींस दैट स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड. दैट मींस बेसिकली वी हैव डिस्कस सबका जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. मीन का जो वैल्यू है, मीन अगर मीडियन, मोड अगर का देखेंगे तो मीन इज द सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी डाटा देता है. मीडियन मोड सम एक्सटेंट इतने अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा देता है, मीन देता है.
ओके,
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट हर जगह सिचुएशन हमको कंपेल करता है कि मीन मत निकालो, मीडियन निकालो, क्योंकि मीडियन बहुत जगह पे इजी हो जाता है कि निकालने में, मोड होता है कि आई बहुत और क्विक निकालने के लिए, तो सिचुएशन के साथ चलना है. लेकिन अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू टू फाइंड आउट द एवरेज डाटा. तो माय पॉइंट इज, अगर बात करेंगे मीन, मीडियन, मोड, उनको साथ एक इंटर रिलेशनशिप है. दैट रिलेशनशिप इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. एक फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम पे भी आता है, इवन हमारा 10th लेवल पे रखा है, बहुत इवन दी सिविल सर्वेंट में भी ये लोग पढ़ते हैं कि उनका एक इंटर रिलेशनशिप है मीन, मीडियन, मोड पे. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. दैट मींस अगर मीन मीडियन पता है, हम मोड निकालते हैं. अगर मोड मीन पता है, मीडियन निकाल सकते. अगर दोनों चीज पता है, थर्ड पार्ट को हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई थिंक डियर लर्नर्स, वी हैव ब्रीफली डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक्स, हाउ वी हैव कलेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज एनालिसिस. इन डिटेल्स आई रिक्वेस्ट यू मे गो टू आवर एस चैनल एंड डिटेल्स यू बेस्ट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर बुक. थैंक यू.